बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़ जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और अंदाज़ जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है यमन पर सऊदी जा रही है। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहाँ। नाज़रीन अंदाज़ जहाँ में यमन पर सऊदी जारहियत के मौजू पर आज हम इस रुख से गुफ्तगू करेंगे कि अगर सऊदी हुकूमत यमन के खिलाफ बकौल खुद 10 मुल्कों का इत्तेहाद बना सकती है तो उसने इसराइल के खिलाफ ऐसा कोई इत्तेहाद बनाने की कोशिश अब तक क्यों न की जिससे वाकई हरमैन शरीफैन को भी खतरा लायक है और सऊदी अरब की अर्जी सालमियत भी खतरे में डाल सकती है। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
यमन पर सऊदी अरब की जारहियत जारी है और हमलों में जान बहक होने वाले बेगुनाह शहरियों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इन हालात में अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस सोसाइटी की तिब्बी इमदाद की पहली और दूसरी खेप सना पहुंच गई है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदारों ने कहा है कि इमदाद की मकदार काफी नहीं है बल्कि मजीद इमदाद की सख्त जरूरत है। दरअसना सऊदी अरब की जानिब से शदीद बमबारी के दौरान यमन के दारुल हुकूमत सना के शहरियों ने वसी पैमाने पर मुजाहरा करके सऊदी अरब के हमलों की मजम्मत की है। यमन के सैकड़ों शहरियों ने जुमे के दिन सना में जुलूस निकालकर सऊदी अरब के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहरीन ने बेगुनाह शहरियों के कत्ल और यमन की बुनियादी तंसीबात पर सऊदी अरब के हमलों की शदीद मजम्मत की। मुजाहरीन ने ऐसे प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इन हमलों पर आलमी इदारों की खामोशी की मजम्मत में नारे लिखे थे और वो मुल्क की सियासी और कौमी पार्टियों से मुतालबा कर रहे थे कि वो अपने इख्तलाफात को फरामोश करके सऊदी अरब के जरायम और जारहियत का मुकाबला करें। मुजाहरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और अरब लीग से भी मुतालबा किया है कि वो यमन के सिलसिले में अपनी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियां पूरी करें। यमन के खिलाफ सऊदी अरब के जारहाना मिशन को उस वक्त झटका लगा जब पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने यमन के खिलाफ सऊदी हमले में पाकिस्तान को गैर जानिबदार रहने का मशवरा दिया, जिस पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्काम ने बरहमी का इजहार किया है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जुमे के मुत्तफिका करारदाद मंजूर की जिसमें सऊदी अरब की सालमियत और मक्के और मदीने के मुकद्दस मकामात के दफा का अज़्म जाहिर किया गया था। ताहम कहा गया था कि पाकिस्तान को सालिसी का किरदार अदा करना चाहिए और यमन की लड़ाई में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। दरअसना पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली और मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी इत्तलात सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का कहना है कि पाकिस्तानी फौज की एक बड़ी तादाद सऊदी अरब में मुकद्दस मकामात की हिफाजत के लिए पहले से मौजूद है और पाकिस्तान अपनी फौजों को यमन में नहीं भेजेगा। पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल राहिल शरीफ की जानिब से भी ऐसे बयान की खबरें हैं जिनमें यमन जंग में शिरकत न करने की बात कही गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात के खारजा उमूर के रियासती वजीर डॉक्टर अनवर महमूद ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के मुबहम और मुतजाद मौकिफ ने यकीनी सबूत पेश कर दिए हैं कि लीबिया से यमन तक अरब सलामती की जिम्मेदारी अरब ममालिक के सिवा किसी की नहीं है और पाकिस्तान को अपने मुबहम मौकिफ की भारी कीमत अदा करनी होगी। डॉक्टर अनवर महमूद ने कहा कि लगता है कि इस्लामाबाद और अंकरा के लिए तेहरान ज्यादा अहम है। दरअसल सऊदी अरब ने पाकिस्तान के एक एयरलाइन का तैयारा उतरने की इजाज़त नहीं दी और एक पाकिस्तानी तंजीम के असासे मुंजमद कर दिए हैं। यमन पर सऊदी अरब के हमले के सिलसिले में बहुत से अरब तजिया निगार इसे बहुत बड़ी गलती करार दे रहे हैं जिसका इर्तकाब सऊदी अरब की नौजवान क्यादत ने किया है। कायदे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामनई ने अपने हालिया खिताब में यमन के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि सऊदियों ने यमन को जारियत के निशाना बनाकर बहुत बड़ी गलती की है और बच्चों का कत्लेआम रहायशी मकानात की मिसमारी और किसी मुल्क की बुनियादी तंसीबात और कौमी सरमाए को तबाह बर्बाद करना एक बहुत बड़ा जुर्म है और इससे सऊदी अरब को नुकसान उठाना पड़ेगा। कायदे इनकलाब इस्लामी ने यमन में सऊदी अरब की शिकस्त का जिक्र करते हुए यमन पर सऊदी अरब के हमले को गजा पर सहयोगियों के हमले से तशबीह दी और कहा कि सहयोगियों की फौजी ताकत सऊदी अरब से कई गुना ज्यादा है और गजा एक छोटा सा इलाका था मगर जब सहयोनी कामयाबी हासिल न कर सके तो यमन तो एक बड़ा और वसी मुल्क है जहाँ की आबादी भी करोड़ों में है।
सऊदी हुकूमत ने गुज़श्ता 16-17 दिन में अपने कुछ इत्तेहादियों के साथ मिलकर यमन को नाबूद करने और उसका बुनियादी ढांचा तबाह कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पनाह गुजीनों के कैंप से लेकर बच्चों के स्कूलों और अस्पतालों तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सऊदियों ने बेगुनाह शहरियों, औरतों और अस्पतालों में जेरे इलाज मरीजों का कत्लेआम करके अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ने की कोशिश न की हो। यमन के निहत्ते बेगुनाह शहरियों, खाक नशीनों को खाक में मिलाने के लिए सऊदी हुकूमत ने कितना एहतमाम किया है कि एक छोटे से गरीब पड़ोसी मुल्क पर हमले के लिए बकौल खुद 10 मुल्कों का इत्तेहाद तश्कील दिया है। पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने इस जंग का हिस्सा न बनने का फैसला किया तो उस पर खुद भी दबाव डाल रहा है और अपने इत्तेहादियों के जरिए बुरे अंजाम की धमकियां भी दिलवाई जा रही हैं। जबकि यमन के अवाम तो बेचारे अपने मसाइल में उलझे हुए थे। 30-32 साल से जारी आमरियत खत्म की तो 3 साल से उनका मुल्क बैन अल-अक़वामी साजिशों की आमाजगाह बना रहा। न यहाँ के लोगों ने सऊदी अरब को धमकी दी थी, न उसके लिए खतरात वजूद में लाए थे और न ही सऊदी इलाकों में यमन की किसी भी किस्म की किसी मुदाखलत की कोई खबर थी। जबकि गासिब सहूनी हुकूमत इस्लाम और इस्लामी दुनिया की अजली और अबदी दुश्मन है, इस्लामी मुल्कों पर कई बार जारहियत कर चुकी है, कई इस्लामी मुल्कों पर कब्जा कर चुकी की सरजमीनों पर कब्जा कर चुकी है। सरजमीनें फलस्तीन के अलावा शाम, उर्दन, लबनान और खुद सऊदी अरब के कई जजीरे भी उसके कब्जे में हैं। ग्रेटर इसराइल के मंसूबे में मक्का और मदीना भी शामिल हैं। सरजमीन हिजाज पर भी उसकी निगाहें हैं। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा मद्देनजर रखें तो हरमैन शरीफैन के लिए हकीकी खतरा सहूनी हुकूमत है। उसूली तौर पर आले सऊद को इत्तेहाद तल अबीब के खिलाफ बनाना चाहिए था। यमन के खिलाफ कई मुल्कों का इत्तेहाद बना के उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके अंदर कैपेसिटी है। वो 8-10 मुल्कों का इत्तेहाद बड़ी आसानी से बना सकते हैं, फिर इसराइल के खिलाफ उन्होंने इत्तेहाद क्यों नहीं बनाया? आज बाज़ हल्के हरमैन शरीफैन की दुहाई दे रहे हैं। हरमैन शरीफैन को इसराइल के अलावा और किसकी तरफ से खतरा हो सकता है? यमन पर सऊदी जारहियत के ताल्लुक से यह भी कहा जा रहा है कि अगर सऊदी अरब की अर्जी सालमियत को खतरा लाहिक हुआ तो उसका भरपूर दफा किया जाएगा। तो इसराइल ने सऊदी जजीरों पर कब्जा करके सऊदी अरब की अर्जी सालमियत को अमली तौर पर खतरे में डाल रखा है। हमारे आज के प्रोग्राम में लंदन से बर्रे सगीर के मुमताज दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर कैसर इमाम, इस्लामाबाद से पाकिस्तान के मुमताज स्कॉलर और तजिया निगार डॉक्टर कंदील अब्बास, लाहौर से जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा फारूक चौहान और दिल्ली से हिंदुस्तान के सीनियर सहाफी और मुमताज तजिया निगार कमर आगा साहब हिस्सा लेंगे। गुफ्तगू का आगाज करेंगे फारूक चौहान साहब से, जो जिनसे स्काइप के जरिए हमारा राबता। चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी चौहान साहब, यमन पर सऊदी हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की जारहियत का कोई जवाब आपको नजर आ रहा है?
देखें, असल बात यह है, जैसे अभी पूरी आपने बात रखी भी है, ये मशरिक़ वुस्ता का के मामलात और ये यमन की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो इस वक्त हमें दरपेश है, इस वक्त इस मामले को दरअसल सही तरीके से इस सारी सूरत हाल का जायजा लेने की जरूरत है। यमन का ये जो मामला है, ये इस वक्त बहुत, देखें आज आपके इलम में है कि अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान में हुई है, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इस मसले पे, यमन के मामले में गैर जानबदार रहने के लिए जो करारदाद पेश की है, उस करारदाद को सराहा जा रहा है पाकिस्तान के सियासी हलकों में, पाकिस्तान के दीनी हलकों में, कि ये करारदाद जो है वो कौमी उमंगों की आईना दार है, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उसको मंजूर किया है, मुश्तरका करारदाद मंजूर हुई है। जहाँ तक यमन के मसले का ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि इसमें हमें देखना होगा कि पाकिस्तान ने तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सोच का और एक अच्छा फैसला किया है, लेकिन असल बात यह है कि हमें इसको मुख्तलिफ पहलुओं से सारी सूरत हाल को देखना होगा मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि यमन के मसले का जो हल है वो मुजाकरात है, मुजाकरात है और मुजाकरात है। यमन का मसला मुजाकरात से हल होगा, उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले सऊदी अरब इस जो फजाई बमबारी कर रहा है वो उस पर सीज़ फायर कर ले, उससे सीज़ फायर हो जाए। और दूसरी बात यह है, सीज़ फायर होने के बाद वहाँ के जो होसी कबाइल हैं और वहाँ पे जो सियासी जमातें हैं यमन की मुकामी सियासी जमातें, वो और उसमें मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब भी ये बैठ के टेबल टॉक करें, मुजाकरात के ज़रिए मसला हल होगा। कभी भी हमेशा दुनिया में जो मसाइल हैं, मामलात हैं, वो मुजाकरात की टेबल पर हल होते हैं, खून खराबे से कभी मसला हल नहीं होता। लेकिन इसके साथ जो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ, बड़ी अहम बात वो ये है कि असल में यमन का जो मामला है, जो इस वक्त इसकी संगीनी आई हुई है, इसमें ईरान का रोल बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। पहले भी उसका बेहतर था, ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान में आए हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ यहाँ से तुर्की गए हैं, तुर्की में भी उनकी अहम मुलाकातें रही हैं। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की तीनों की ये ख्वाहिश है कि इस मसले का सियासी हल निकाला जाए और मुजाकरात के ज़रिए इस सारे मामले को हल किया जाए। लेकिन इसके साथ असल बात यह है, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो भी रही थी, वो ये है ग्रेटर इसराइल का जो मसला है, ये मशरक़ वस्ती में ये सबको इलम है, तमाम इस्लामी ममालक जानते हैं कि इसराइल जो है असल ख़तरा इसराइल है। और दूसरी बात यह कि इसराइल के साथ, जैसे अभी आपने बात की, इसराइल के अलावा अमेरिका एक बड़ा ख़तरा है, बड़ा इस खत्ते के अंदर भी और पूरी दुनिया में जो इस्लामी ममालक मौजूद हैं। आप ये देखें कि इससे पहले ये जो खून खराबा है, खून रेजी जो है, वो अफगानिस्तान में भी बरपा की गई, वो इराक में भी की गई, और ये अमेरिका ने किया। अब अमेरिका यहाँ से अफगानिस्तान से निकल गया, अमेरिका यहाँ आया था, अफगानिस्तान से निकल गया अपने मजमूम मकासद पूरे करके, और उसके साथ इराक से, इराक में उसने कहा कीमियाई हथियार हैं, कुछ भी इराक से नहीं मिला, और अमेरिका वहाँ से भी इस तरह नकाम और नामराद निकला, लेकिन वहाँ भी उसने खाना जंगी की सूरत में कुछ चीज़ें छोड़ दी। यमन का जहाँ तक मामला है, ये बात ठीक है, बैरूनी जारियत वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यमन का मामला ये मुजाकरात से और सियासी अंदाज में हल होना चाहिए, और इसके लिए पाकिस्तान भी कोशिशें कर रहा है, इसके लिए ईरान से ईरान भी कोशिशें कर रहा है, इसके लिए तुर्की की भी मिलके मुश्तरका इसमें कोशिश जारी है। लेकिन मैं इसमें ये अर्ज़ करूँगा कि इसमें हमें देखना चाहिए कि इस्लामी ममालक का मुश्तरका दुश्मन कौन है। इस्लामी ममालक का मुश्तरका दुश्मन अमेरिका है, वो चाहता है कि ये, आप देखें कि इस मसले इससे पहले भी ज़रा मुस्तरफ आ जाते हैं कि आप मशरक़ वस्ती के अंदर पहले भी मामलात ख़राब किए गए। पहले देखें कि ईरान इराक जंग लड़वाई गई और ईरान को भी नुकसान पहुँचाया करती थी, ये इस्तेमारी एजेंडा था, ईरान को कमज़ोर किया गया, इराक को कमज़ोर किया गया, ईरान इराक जंग हुई, ईरान का बहुत नुकसान हुआ, दोनों मुल्कों का बड़ा नुकसान हुआ, ये इस्लामी मुल्कों का नुकसान करवाया गया, और ये आलमी एजेंडा था, इस्तेमारी एजेंडा था। और उसके बाद ईरान इराक जंग के बाद हमने देखा कि इराक से कुवैत पर हमला करवाया गया, वो भी खलीज की एक जंग की सूरत में बड़ा नुकसान हुआ। फिर उसके बाद इराक के ऊपर अफगानिस्तान और 9/11 के बाद अमेरिका ने रुख किया अफगानिस्तान का और फिर इराक का, और फिर हमने देखा कि वहाँ उसने लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया, उनका खून बहाया, और उसके बाद अमेरिका, अब मशरक़ वस्ती के अंदर अमेरिका मौजूद है, इसराइल की साजिशें पहले से मौजूद हैं, ये अमेरिका और इसराइल दोनों नहीं चाहते, और उसमें बाकी भी कुव्वतें ऐसी हैं जिसमें बरतानिया और बाकी कुव्वतें हैं जो इस्लामी ममालिक को कमज़ोर करना चाहती हैं। इस बात को सऊदी अरब को समझ लेना चाहिए, इस बात को ईरान को भी समझना चाहिए। हम समझते हैं कि ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, इस तरह सऊदी अरब से भी ईरान की तरह हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। हम नहीं चाहते कि अब इस खित्ते के अंदर एक चौथी एक ऐसी जंग लड़ी जाए जो ईरान और खुदा न खासा सऊदी अरब के दरमियान हो और इससे अमरीकी मकासद पूरे हों। अमरीका का एजेंडा यही है, ईरान भी इस तरफ मतवज्जो है।
शुक्रिया चौहान साहब, हम दोबारा आएंगे आपकी तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब। और हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में पाकिस्तान के मुमताज स्कॉलर और सीनियर तजिया निगार कंदील अब्बास साहब मौजूद है। कंदील अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। कंदील साहब, जी कंदील साहब, सऊदी हुकूमत ने यमन के खिलाफ बकौल खुद 10 मुल्कों का इत्तेहाद बना के साबित कर दिया है कि उसके अंदर इत्तेहाद बनाने की कैपेसिटी है, पैसा है, मगरबी दुनिया से खरीद के जमा किए गए असलहे हैं, किराए के फौजी हासिल करने के लिए पेट्रो डॉलर हैं, सरताबी करने वाले मुल्कों को धमकियां देने वाले दोस्त हैं, फिर उसने अपनी इस क्वालिटी से इसराइल के खिलाफ कोई इत्तेहाद बनाने की कोशिश क्यों नहीं की?
देखिए, शुरू में सऊदी अरब को जो तकद्दस मिला वहाँ पर हरमैन शरीफैन की मौजूदगी की वजह से, और वहाँ पर हज का एक मुकद्दस फरीज़ा पूरी दुनिया के मुसलमान अदा करने जाते हैं, और हज के अलावा फिर साल भर उमरे का सिलसिला भी जारी रहता है, इस वजह से पूरी दुनिया में सऊदी अरब को एक लीडिंग रोल मिला हुआ था और लोग सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। लेकिन जो तकद्दस लोगों के दिलों में था सऊदी अरब के बारे में, अगरचे उसमें सऊदी शाही खानदान को भी इंक्लूड कर दिया गया खादमुल हरमैन शरीफैन जैसा लकब लगाकर, लेकिन अब प्रॉब्लम यह हुआ है कि खादमुल हरमैन शरीफैन का जो टाइटल उनको दिया गया उस बुनियाद पर तवक्को तो ये की जा रही थी कि सऊदी अरब पूरी इस्लामी दुनिया के मसाइल को पर गौर करेगा और उसको हल करने में अपना किरदार अदा करेगा, लेकिन हिस्टोरिकली भी हमने देखा और रिसेंट 20-30 सालों के दौरान खासतौर पर हमने देखा कि किसी भी सतह पर सऊदी अरब का कोई प्रोमिनेंट रोल नजर नहीं आता। ये मसला अगर अफगानिस्तान का हो, इराक का हो, फिलिस्तीन का हो, लुबनान का हो, या कहीं भी आप देखें मुसलमान ममालिक में जहां पे भी कोई प्रॉब्लम आया है, सऊदी अरब उसमें कोई एक तामीरी रोल जो है वो प्ले करने से बिल्कुल कासिर रहा है। दूसरी तरफ यह हुआ है कि बाज जगहों पे जहां पर क्राइसिस आए हैं तामीरी रोल तो एक तरफ, वहां पे तखरीबी रोल सऊदी अरब का नजर आया है, क्योंकि रिलीजियसली जहां पे एक्सट्रीमिज्म आया, जहां पर इंतहा पसंदी आई, जहां पर दहशतगर्दी आई, वहां कहीं ना कहीं उसके ताने बांधे सऊदी अरब से भी मिलने शुरू हुए। इस वजह से मैं समझता हूं कि वो तकद्दस इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब का खत्म हो गया जो आहिस्ता आहिस्ता वहां उन्होंने डेवलप किया था, और खासतौर पर ईरान में इस्लामी इंकलाब आने के बाद, चूंकि ईरान की तरफ से पूरी इस्लामी दुनिया में और खासतौर पर जिन मसाइल का मैंने जिक्र किया फिलिस्तीन के मसले में बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया गया और बराह रास्त क़िबला अव्वल की आज़ादी का एक नारा लगाया गया और उसके लिए प्रैक्टिकल रोल भी प्ले किया गया, इस वजह से ईरान को सऊदी अरब के मुकाबले में इस्लामी दुनिया में ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन अब चूंकि ऐसे स्टेज पर मुस्लिम दुनिया के हालात पहुंच चुके हैं कि तकरीबन हर खित्ता जो है वो क्राइसिस का शिकार है, और फिर इसराइल के खिलाफ एक छोटी सी जब जंग हुई उसमें एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश की तो चंद दिनों में वो इत्तेहाद पाश पाश हो गया। अब चूंकि इन जितनी खलीज फारस की जितनी रियासतें हैं सऊदी अरब की क्यादत में आप अगर देखें तो इनके पास किसी किस्म की मुनज़्ज़म फोर्स आज तक बन ही नहीं सकी, और उनके अंदर जो एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है वो भी कोई ज़्यादा इंडिजिनस नहीं है, लोकल नहीं है। उसमें अक्सर ममालिक के पास जो फौजें हैं वो बाहर से आई हुई हैं दूसरे ममालिक से, क्योंकि उनके अपने पास लड़ने की सलाहियत नहीं है, और फिर उनकी पुलिस के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर बाहर के लोग हैं। अब ऐसी सिचुएशन में सऊदी अरब का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन थी मिस्र, उमान, उर्दन और पाकिस्तान के ऊपर कि वो इसका हेल्प करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वही जो सवाल आप कर रहे हैं कि इसराइल के खिलाफ चूंकि उन्होंने कोई बहुत अच्छा आज तक रोल प्ले नहीं किया, मजलूम फिलिस्तीनियों की हमायत में उनका कभी रोल नजर नहीं आया, मजलूम लिबनानिया के ऊपर जो इसराइल के हमले हुए उसमें उनका कोई रोल नजर नहीं आया, इस वजह से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो तकद्दस था वो खत्म हो गया, और आज अपोजिशन की तकरीबन तमाम जमातों ने मिलकर कहा कि हमें सऊदी क्यादत में यमन के खिलाफ जो जंग हो रही है उसमें एंटर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी बजाय खुद पाकिस्तान का अपना एक अहम रोल है, और फिर एक ऐसी ट्राइंगल की बात नजर आती है जो इससे पहले RCD में थी, उसके बाद ECO में थी, यानी पाकिस्तान, तुर्की और ईरान। अब तीनों मुल्कों के दरमियान पिछले 2-4 हफ्तों के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स हुए हैं उससे महसूस होता है कि ये ममालिक खुद एक बड़ा तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब ने बहुत बड़ा एक जहन बनाया हुआ था कि पाकिस्तान और मिस्र से खासतौर पर उनको फौजें मिलेगी। मिस्र को अब तक वो $15 बिलियन दे चुके हैं, और तकरीबन सवा साल पहले पाकिस्तान को भी $1.5 मिले थे। $1.5 बिलियन मिले थे। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम देखते हैं कि इस्लामी दुनिया से ना सिर्फ ये कि उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रही बल्कि इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब के इस इकदाम की मुखालफत हो रही है, क्योंकि ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि सऊदी अरब ने पहली दफा में ही एक इस्लामी मुल्क पर हमला किया और मुसलमानों के खून बहाने में उसका हाथ नजर आ रहा है, कि जो मेरा ख्याल है सऊदी अरब के लिए अल्टीमेटली बहुत बुरा साबित होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे लंदन स्टूडियो में बर्रे सगीर की मुमताज दानश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर कैसर इमाम साहब मौजूद हैं। कैसर इमाम साहब, जनाब पाकिस्तान कौमी असम्बली ने करारदाद पास की और उस करारदाद में ये फैसला किया कि पाकिस्तान गैर जानिबदार रहेगा, यमन पर जारहियत में सऊदी हुकूमत का साथ नहीं देगा। इस पर जो रद्द अमल आया है, सऊदी हुकूमत ने बरहमी का इजहार किया है और बताया जाता है कि उसके एक इत्तेहादी मुल्क शायद मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान को बुरे अंजाम की धमकी भी दी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
मैं समझता हूं कि ये चीज जो है, ये इस किस्म का जो बयान है, ये पहले से महसूस हो रहा था कि ऐसी बात जरूर पैदा हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो सऊदी अरब से ताल्लुकात हैं, मैं इस तरह इसको कहूंगा कि पाकिस्तान की हुकूमत के सऊदी अरब की हुकूमत के साथ जो ताल्लुकात हैं उनकी नौईयत ऐसी है कि सऊदी अरब की हुकूमत ये समझती है कि जो भी वो हुक्म देगी वो पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसको मनमान कबूल करेगी, उस पर अमल करेगी, और यही तवक्को इस सूरत में भी समझी जा रही थी, सऊदी अरब के जहन में यही बात थी। लेकिन जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये बात आ गई तो पार्लियामेंट में आवाज़ वो पैदा हुई जो पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ थी, जो पाकिस्तान की हुकूमत की आवाज़ नहीं थी। हुकूमत तो पहले से तय कर चुकी थी कि सऊदी अरब को फौज की और नेवी की और एयरफोर्स की जो इमदाद चाहिए, जो उसकी ज़रूरत है, वो पूरी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर दफा ये कह चुके थे कि अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ऐसा ना भी किया, ये सूरत कबूल ना भी की, तो हम कोई और रास्ता तलाश करेंगे। सो मैं समझता हूं कि अभी उनके पास इस किस्म के मौके हैं कि वो कोई और रास्ता तलाश करें, लेकिन अब जो दबाव इमारात की तरफ से और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान पर डाला जा रहा है, उससे ये महसूस होता है कि वो इस किस्म के इकदाम करना चाहते हैं जिनसे ये दबाव और भी ज़्यादा कवी हो जाएगा, उसको ज़्यादा तकवीत हासिल हो जाएगी। पाकिस्तान में ये महसूस किया जा रहा है कि पाकिस्तान के लाखों अफराद जो हैं वो इमारात में, अरब इमारात में, सऊदीया में काम करते हैं, उनके जहां तक कारोबार को भी खतरा हो सकता है। पाकिस्तान के अवाम ये भी महसूस करते हैं कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन पर अटैक करने की कोशिश की तो इसको जो रंग पाकिस्तान में दिया जाएगा वो सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से और इस तरह से शिया और सुन्नी के हवाले से पाकिस्तान में इस किस्म के मामलात पैदा हो जाएंगे जिनमें फिरका वारियत जो है इसको बहुत ज़्यादा सबकत हासिल हो जाएगी, ये पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं होगा। सो ये दबाव सारे के सारे पाकिस्तान के अवाम पर भी हैं, पाकिस्तान की हुकूमत पर भी हैं, और ये बात सऊदी अरब की हुकूमत और इमारात की हुकूमतें ये जानती हैं कि पाकिस्तान इस दबाव में है और बड़ी देर तक शायद रहेगा, लेकिन इसके बावजूद देखना यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कोई संजीदगी से ऐसा पहलू तलाश करती है या नहीं जिसमें वो अपने ईरान के साथ ताल्लुकात को भी सही तरीके से कायम रख सके, सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात को ख़राब ना करे, और पाकिस्तान के अवाम के जो मफादात सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्कों में हैं उनको भी कोई ज़ोफ ना पहुँचे।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तज़िया निगार कमर आगा साहब। कमर आगा साहब, यमन पे सऊदी जारहियत जारी है और बकौल खुद सऊदी हुकूमत के इसमें 10 मुल्कों का तआवुन उसे हासिल है, एक इत्तेहाद उसने बनाया है और इस इत्तेहाद के जरिए जाहिर है कि यमन पे जो काम वो कर रहे हैं, जो जारहियत है, इससे जो नुकसान यमन को पहुंच रहा है वो दुनिया के सामने है। मेरा सवाल यह है कि सऊदी हुकूमत अगर इतना बड़ा इत्तेहाद बना सकता है तो फिर उसने इस्लाम और मुसलमानों के अजली और अबदी दुश्मन इसराइल के खिलाफ कोई मुत्तहिदा महाज क्यों नहीं बनाया?
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ کا وجود ہی امریکہ اور برٹین کی بدولت ہوا تھا, اور یہ اس میں آئے انہی لوگوں نے اس ملک کا وجود کیا. سعودی عربیہ نام کا کوئی ملک نہیں تھا دنیا میں, انہی نے کریٹ کیا, اور وہاں پہ ہاؤس آف سعود جس طریقے سے بٹھائے گئے ہم سب جانتے ہیں. ان لوگوں نے شروع سے جب سے فلسطین کا مسئلہ اٹھایا, یعنی پہلی جنگ عظیم سے پہلے سے ان کا الائنس ہو گیا تھا برٹین کے ساتھ, اور پھر اس کے علاوہ وہ الائنس چلتا رہا, اور آخر میں انہی نے چاہے بلفور ڈکلیریشن ہو یا پھر اس کے علاوہ اس کے بعد جو بھی پیلسٹائن پارٹیشن ریزولوشن جو یونائٹڈ نیشنز میں آیا, اس کا جس طریقے سے مخالفت کرنی چاہیے تھی, یا اس وقت جس طریقے سے فلسطینیوں کو مدد دینی چاہیے تھی, وہ زیادہ تر عرب دیشوں نے نہیں دی. اور یہ عرب دیش زیادہ تر جو تھے وہ, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اسرائیل سے ملے ہوئے تھے کیونکہ اس کا وجود نہیں تھا اس وقت تک, لیکن ان کا کہیں نہ کہیں صہیونی طاقتوں سے جرمنی, فرانس, سوئٹزرلینڈ اور اس وقت کی جو کولونیل پاور تھی ان کے ساتھ, برٹین کے ساتھ ان کا ایک رشتہ تھا, اور ہمیشہ سے یہ تب سے بنا ہوا ہے. انہیں کبھی بھی کھل کے پیلسٹینین کا ساتھ جس طریقے سے دینا چاہیے تھا نہیں دیا. ان کا ماننا یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہتے رہے کہ پیلسٹائن کے اندر جو موومنٹ ہے وہ نیشنلسٹ موومنٹ ہے, اور اسلام کا نیشنلزم سے کوئی لینا دینا نہیں, اسلام نیشنلزم میں یقین نہیں رکھتا. پھر بعد میں انہیں نے کہا جب حمس آ گئی پاور میں, تو ان کا ماننا یہ ہوا کہ حمس تو مسلم برادرہڈ کا ایک حصہ ہے, اس لیے حمس کو وہ سپورٹ نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف کام کرتے ہیں, اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ آئیڈیالوجیکلی بھی کمیٹیڈ ہیں, اور یہ لگاتار اس کے خلاف ہمیشہ کام کرتے رہے ہیں. کچھ ایسی تھی, اب یہ غور طلب بات یہ ہے کہ پیسہ یہ ضرور پبلک پریشر آتا تھا تو اس کے اوپر یہ اناؤنس کر دیتے تھے, اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جتنی ایڈ یہ پرومس کرتے تھے اس کی بہت کم رقم وہاں تک پہنچتی تھی, تو مالی امداد بھی بہت کم لوگوں کو ملتی تھی. بہت بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو نوکریاں بھی انہیں نہیں دیں, جس اس سے زیادہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو ملیں. تو اس طرح کی باتیں ہیں جو شروع سے ہیں, جو ہسٹری کے ساتھ ہے. دیکھیے جہاں تک ہاؤس آف سعود یا سعودی عربیہ کی حکومت کا سوال ہے, وہ زیادہ تر ڈپینڈنٹ ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے بڑے طاقتوں پہ, خاص طور سے امریکہ اس کے اوپر, اور ان کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ بھی ہے آئل فار سیکیورٹی جس کو کہتے ہیں, یعنی تیل سستا تیل وہ پرووائڈ کریں گے, اس کے عوض میں امریکہ ان کو سیکیورٹی دے گا. اور اسی معاہدے کے تحت جب کویت کے اوپر صدام حسین نے قبضہ کیا تھا تو ان کو مدد پہنچائی گئی تھی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلسطین ان کے لیے اتنی پریورٹی نہیں ہے جتنی بڑی پریورٹی ان کا ماننا یہ ہے کہ یمن ہے, اور پھر یمن میں جو حوثی ٹرائب ہے جس کے لوگ زیدیز کو زیادہ بڑا خطرہ مانتے ہیں, ان کو ہیریٹک بھی کہتے ہیں, اور وہ ان کی ٹاپ پریورٹی ہے, اور اسی کے لیے انہیں نے یہ اتحاد تیار کیا ہے 10 ملک. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ 10 ملکوں کی جو فوجیں ہیں, افواج جو ہیں, وہ اس کیپیبل نہیں ہے کہ ان یمن میں جائیں اور جا کے لڑ سکیں, سوائے 2-3 فوجیں ایسی تھیں کہ جو کیپیبل ہیں, جو اس طرح کے اس میں جا سکتے ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جارڈن, تھوڑا سا, پورا نہیں, پورے طریقے سے نہیں, اس لیے کہ جارڈن انٹرنلی بہت انوالو ہے, اپنے یہاں کی کرائسس میں پھنسا ہوا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ایجپٹ کے ہاں ضرور وہاں پہ ہے, لیکن ایجپٹ کا پچھلا ریکارڈ اچھا نہیں رہا ہے. انہیں نے ساؤتھ یمن پہ جب قبضہ کیا تھا تو ان کے بہت لوگ مارے گئے تھے, اور اب ان کے لیے مشکل ہوگی کیونکہ ان کے اندر بھی کرائسس بہت زبردست ہے. پھر اس کے علاوہ پاکستان سے انہیں بہت امیدیں تھیں, اور وہاں سے ان کی فوج پہ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ ان کو مل جائے گی, مہیا ہو جائے گی. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی حکومت نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تو پاکستان نہیں جائے گا. پاکستان, سعودی عربیہ اور دوسرے جو پرشین گلف کے اسٹیٹس ہیں ان کے اوپر بے پناہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور پاکستان کی آرمی جو ہے اس کا بہت کلوز ریلیشن ہے سعودی عربیہ سے, اور سب ہم سبھی جانتے ہیں پاکستان میں جو پاکستان کی فوج ہے وہ سب سے پاورفل انسٹیٹیوشن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجن کو کسی وقت ریویو بھی کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ان کے بہت بڑی تعداد میں لوگ ان دیشوں میں کام کرتے ہیں, جس کا کہ ذکر ابھی ہم سے پہلے کر رہے تھے صاحب لندن سے. اور اس کے علاوہ ان کے اوپر جو فورن ایکسچینج ہے जो आती है इन देशों से वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ी क्राइसिस में है और पाकिस्तान को माली इमदाद भी इन देशों से बहुत बड़ी रकम में मिलती है।
शुक्रिया जनाब।
आर्मी इन देशों में पहले से मौजूद है और हमेशा उसने इनको इनकी मदद की है, वहाँ के हुक्मरान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान को।
बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जहाँ नाज़रीन यमन पर सऊदी जारहियत के ताल्लुक से गुफ्तगू हो रही है, चलते हैं चौहान साहब के पास। जी चौहान साहब, जनाब आपने अपनी गुफ्तगू में हवाला दिया ईरान इराक जंग का, यकीनन ये साम्राज्य का एजेंडा था और साम्राज्य के चढ़ाने पर ही सद्दाम ने ईरान पर जंग मुसल्लत की थी। फिर कुवैत पर जो हमला हुआ वो भी साम्राज्यी एजेंडा था। मौजूदा हालात को देखें अगर आप, इराक में दाइश का जो फितना है, शाम में जो तकफीरी दहशतगर्दी का फितना खड़ा किया गया, लीबिया में जो खाना जंगी की आग वहाँ पर भड़काई गई और इस वक्त वहाँ हर इलाके में एक हुकूमत अलग है, मिस्र में जिस तरह से इनकलाब को सबोताज किया गया और इसराइल नवाज हुकूमत लाई गई, ये सब साम्राज्य एजेंडा है, ये सब सहूनी लॉबी का तैयार करदा एजेंडा है। ये आप जैसा मजहबी और सियासी स्कॉलर भी इसको समझता है, हालात पे गहरी नज़र रखने वाले तजियाकार भी इसको महसूस कर रहे हैं, मुझ जैसा मामूली आदमी भी इसको समझ रहा है। मेरा सवाल ये है कि यकीनन मशरक़ वस्ता में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सहूनी एजेंडा है, वो साम्राज्य एजेंडा है, यमन पर जारहियत भी साम्राज्य और सहूनी एजेंडा है। इस्लामी मुल्कों की हुकूमतें और इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान क्यों सहूनी और साम्राज्य एजेंडे पर अमल कर रहे हैं?
जी ये बात आपकी दुरुस्त है। असल में हमें देखना भी इसको इस तरह होगा कि देखें मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो इसराइल का वजूद है वो ही एक इतना ख़तरनाक है और वो एक ख़तरनाक एक नासूर की हैसियत से वो रखता है। और जब तक इसराइल का वजूद है मशरिक़ वुस्ता के अंदर ऐसे मामलात वो होते भी रहेंगे और पीछे माजी में होते भी रहे। लेकिन इसके साथ मैं आपको अर्ज करूं, जैसे अभी बात चल रही और आपने बात रखी है, देखें आप इसका जरा तजिया करें सारी सूरतेहाल का, कि जब अमेरिका इराक से निकला है और इराक से निकला है उसने, अमेरिका ने इराक से जाते जाते ऐसा आग और खून का अलाव वहां भड़का दिया है। इराक के बाद हम शाम भी देखते हैं, शाम के बाद हम इसके यमन, मैं ये कहता हूँ यमन के मसले को भी जो लोग जो कहते हैं ये गलत कहते हैं, इसको शिया सुनी का रंग नहीं देना चाहिए, ऐसा कतन नहीं है। और ये दूसरी बात मैं आपको इसके साथ अर्ज कर दूं, देखें अमेरिका ने इराक से जाते जाते जो सूरत इराक में की, इराक में जो हालात खराब हुए, फिर शाम में सूरत हुई, फिर यमन में यही मामला है। अब इसको हमें देखना होगा कि ये बात ठीक है, मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब भी, ईरान भी, पाकिस्तान भी, तुर्की भी, इन सब को समझना चाहिए कि हमें ये इसराइल और अमेरिका का जो गठजोड़ है इसको नाकाम बनाना है और इसराइल का नासूर जब तक इस खिते से खत्म नहीं होगा मशरिक़ वुस्ता से, ये मामलात ऐसे ही होते रहेंगे और मुख्तलिफ जगहों पे लेकिन ये 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 जो खूनरेजी का अमल है इसे रुकना चाहिए। एक सवाल ये है जो मैं आपसे भी करना चाहता हूँ और इस वक्त हम इसको पूरा रखें भी इस डिबेट को, कि आया ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो हालात खराब हुए, अफगानिस्तान में भी, इराक में भी, और हमने देखा कि यमन में सूरत अब खराब है, आया कि ये इस्लामी ममालक के अंदर तो ये हालात बदमनी है, इस्लामी ममालक के अंदर जो है ये आग और खून का खेल जारी है, क्या ये सूरत अमेरिका में है, क्या अमेरिका और यूरोपीय ममालक के अंदर जो है बदमनी का तूफान बरपा है, वहां हम देखते हैं वहां तो अमन ही अमन है। इसका मतलब ये है कि ये आलमी साम्राज्य एजेंडा है, इस्तेमाली एजेंडा, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को, ईरान को, तुर्की को, सऊदी अरब को, इनको समझना चाहिए कि ये अमेरिका और इसराइल की साजिश है, इसे नाकाम बनाना है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं इस सारी सूरतहाल में यमन के तनाजे में पाकिस्तान का, ईरान का, तुर्की का रवैया बहुत पॉजिटिव है और इंशाल्लाह मंजरनामा चल रहा है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका सियासी हल निकलेगा और मुज़ाकरात के जरिए निकलेगा इंशाल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया कंदील अब्बास साहब। जनाब, जब से सऊदी हुकूमत ने यमन पर जारहियत शुरू की है, एक बात जो बार बार कही जा रही है और सामने आ रही है वो हरमैन शरीफैन के तहफ्फुज़ का मसला है, सऊदी अरब की अर्जी सालमियत की बात की जा रही है। मेरा सवाल यह है कि सऊदी अरब की अर्जी सालमियत और हरमैन शरीफैन को हकीकी मानों में खतरा किसकी तरफ से है?
देखिए, पाकिस्तान में ये बहस काफ़ी गर्म है और पूरी इस्लामी दुनिया में भी इस मौजू पर बहस हो रही है, क्योंकि एक तरफ तो क़िबला अव्वल इसराइल के कब्ज़े में है और उसकी आज़ादी के लिए मुकामी सतह पर भी तहरीकें चल रही हैं और इस्लामी दुनिया के अंदर भी एक हसासियत पाई जाती है। लेकिन जहाँ तक हरमैन शरीफैन की बात है, यानी मक्का और मदीना की बात है, तो इसके ऊपर इस्लामी दुनिया में भी एक मौकफ सामने आ रहा है और ख़ास तौर पे हमने पिछले दिनों देखा पाकिस्तान में भी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की सालमियत के ऊपर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अगर सऊदी अरब को कोई खतरा लाहक होता है तो पाकिस्तान उसमें सऊदी अरब की भरपूर मदद करेगा। यकीनन इससे पहले भी हम देखते हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेज ऑलरेडी सऊदी अरब में तैनात हैं और उनके जिम्मा भी यही है कि कभी हरमैन शरीफैन को कोई खतरा लाहक होता है तो वो अपने खिदमात पेश करेंगे और अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन हालिया दिनों में एक बड़ी बहस गर्म हुई है कि हरमैन शरीफैन का तहफ्फुज़ या खानदान आले सऊद का तहफ्फुज़, ये दो अलग चीज़ें हैं और पाकिस्तान या इस्लामी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा हसासियत पाई जाती है कि हरमैन शरीफैन पर कोई आंच ना आए और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है हर मुसलमान जो है वो एक हसासियत रखता है। लेकिन जहाँ तक सऊदी ख़ानदान की बात है तो मुश्किल ये है कि वो हरमैन शरीफैन को अपने तहफ़ के साथ मुंसलिक करते हैं कि जो अब वो बात ख़त्म हो चुकी है, इसलिए कि जितनी भी ये खलीज फारस की रियासतें हैं जहाँ पर बादशाहत है या सऊदी अरब जहाँ पर बादशाहत है, असल में थियोरेटिकली ये होता है कि जहाँ पर डिक्टेटरशिप या बादशाहतें होती हैं उस तरह के हुक्मरानों की रूट्स जो होती हैं अपने अवाम के अंदर तो नहीं होती, बनाबरी उनको अपने इक्तदार को या अपने रूल को बचाने के लिए बैरूनी ताकतों का सहारा लेना पड़ता है। इसी बुनियाद पर आप देखिए कि अगर इराक पर अमेरिका ने हमला किया या अफगानिस्तान पर हमला किया या किसी और मुल्क पर सख्ती की, बुनियादी बात उसमें यह थी कि वहां के हुक्मरानों की जड़ें अपने अवाम के अंदर नहीं थी। लेकिन ईरान के खिलाफ बड़ी सख्त किस्म की रवैया होने के बावजूद, इतनी पाबंदियां लगाने के बावजूद, अमरीका को यह जरूरत नहीं हुई कि ईरान के ऊपर कभी बराह रास्त फौजी मिलिट्री ऑपरेशन करके हमला कर, तो उसकी असल वजह यह थी कि वहां के हुक्मरानों की जड़ें अपने अवाम के अंदर हैं और अगर ऐसा कोई हमला होता है तो एक ऐसा रिएक्शन आ सकता है कि जिसके नतायज अमरीका के लिए या किसी भी हमलावर के लिए बहुत ज्यादा मनफी साबित होंगे। जैसा कि इराक जंग में हमने देखा कि बड़ी प्लानिंग के साथ एक तरफ ईरान अकेला और दूसरी तरफ पूरी मगरबी दुनिया, अरब ममालिक और इराक, इसके बावजूद वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सके। अब चूंकि जो मैं थोड़ी देर पहले भी अर्ज किया कि हरमैन शरीफैन का तहफ़ तो मेरा ख्याल हर मुसलमान की एक प्रायोरिटी है, लेकिन अब इससे ज्यादा जो सऊदी खानदान है यानी हाउस ऑफ सऊद है वो अपने तहफ़ को हरमैन शरीफैन के साथ मुंसलिक नहीं कर सकता, इसलिए कि उनका किरदार इस्लामी दुनिया के लिए अब वो काबिल कबूल नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने ना तो फिलिस्तीन के मामले में, ना इराक के मामले में, ना अफगानिस्तान के मामले में अपना वो तामीरी रोल प्ले नहीं किया। और अब मेरा ख्याल है कि ईरान भी अब वो पुराना ईरान नहीं है और हालिया जो एक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी ईरान की उसके बाद एक चेंज आई है और इस नई चेंज में मेरा ख्याल है कि
बहुत बहुत शुक्रिया कंदील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा कैसर इमाम साहब से, वक्त हमारे पास कम रह गया है। कैसर इमाम साहब, डेढ़ मिनट में हमें जवाब चाहिए। इसराइल ने सऊदी अरब के बास जजीरों पर कब्जा कर रखा है, इस तरह उसने सऊदी अरब की अर्जी सालमियत को अमली तौर पर खतरे में डाल रखा है और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा हरमैन शरीफैन के लिए हकीकी खतरा है। इस खतरे की जानिब से खुद आले सऊद भी और उनके इत्तेहादी भी क्यों आंखें बंद किए हुए हैं? डेढ़ मिनट का वक्त है हमारे पास।
دیکھیں اس سے پہلے بھی آپ نے ایک بہت خوبصورت سوال کیا تھا کہ اگر آج سعودی عرب اور دوسرے چند ممالک جو ہیں وہ کوئی اس طرح کی فوجی حکمت عملی طے کر رہے ہیں اور ایک فوجی اتحاد بنا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں یہ صلاحیت تو موجود ہے, تو پھر کیوں انہوں نے آج تک اسرائیل کے خلاف ایسا کوئی محاذ نہیں بنایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج اگر آپ غور کریں تو اس اتحاد میں خود اسرائیل شامل ہے, اس کی ٹیکنالوجی اور اس کی سیاسی اور اس کی جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں فوجی معلومات ہیں وہ سب اسرائیل کو حاصل ہیں, اور امریکہ بھی ان کی پشت پناہی پر ہے, امریکہ اور یورپی ممالک بھی اس کو پوری سیاسی اور فوجی امداد دے رہے ہیں. سو اگر یہ امداد ان کو حاصل نہ ہو تو یہ اتحاد قائم نہیں رہ سکتا, لیکن اگر یہ اتحاد اسرائیل کے خلاف ہوتا تو پھر یہ سب کچھ اسرائیل کو حاصل ہوتا, عرب ممالک کو حاصل نہ ہوتا, اس لیے یہ ممالک کبھی ایسا نہیں کر سکے. دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ یہ لوگ آج تک کیوں ایسا نہیں کر سکے, یہ اس لیے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.